दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के बाद कमरे में फिर वही भारी सन्नाटा फैल गया, ऐसा सन्नाटा जिसमें सांसों की हल्की आवाज़ भी साफ सुनाई दे। श्यामली कुछ पल वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों में चोट साफ थी। विश्वनाथ ने पहली बार उसे उस तरह खुद से दूर किया था जैसे वो उससे नहीं, खुद की भावनाओं से डर गया हो। लेकिन उस चोट के पीछे एक और चीज़ थी, जिद। वो धीरे धीरे बिस्तर तक गई और बैठ गई। उसकी नज़र सामने दीवार पर थी, लेकिन मन में सिर्फ विश्वनाथ। उसकी कांपती आवाज़, उसकी बेचैन आँखें, उसका अचानक कमरे से चले जाना, सब कुछ बार बार याद आ रहा था। और जितना वो सोच रही थी उतना ही एक बात साफ होती जा रही थी, विश्वनाथ उसे ठुकरा नहीं रहा था, वो खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। इतना क्यों डरते हैं आप, उसने बहुत धीमे खुद से कहा। उसकी आंखें हल्की नम हो गईं। फिर वो धीरे से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ सेकंड तक खुद को देखती रही, फिर जैसे उसके अंदर कोई फैसला उतर आया, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, ऐसी मुस्कान जिसमें प्यार भी था और शरारत भी। आज आपको भागने नहीं दूंगी, उसने धीमे से बुदबुदाया। करीब आधे घंटे बाद हवेली की लंबी गलियों में कदमों की धीमी आवाज़ गूंजी। विश्वनाथ वापस लौट रहा था, चेहरे पर वही तनाव था। वो काफ़ी देर तक नीचे लाइब्रेरी में बैठा रहा था, किताब सामने खुली थी, लेकिन उसका ध्यान एक शब्द पर भी नहीं टिक पाया। उसका मन बार बार ऊपर भाग रहा था, उस कमरे में जहाँ श्यामली अकेली थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और अगले ही पल उसके कदम वहीं रुक गए। कमरे की हल्की सुनहरी रोशनी में श्यामली खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की गुलाबी साड़ी उसके बदन से बेहद नरमी से लिपटी हुई थी। रेशमी कपड़ा हवा के साथ हल्का हल्का हिल रहा था। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे, कानों के झुमके रोशनी में चमक रहे थे। हाथों की गुलाबी चूड़ियाँ उसकी हर हरकत के साथ मीठी खनक पैदा कर रही थीं। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन करने वाली चीज़ थी उसकी आँखें। आज उनमें झिझक नहीं थी, आज वो पूरी तरह उसी पट्टी की थी, जैसे कह रही हो, अब और मत भागिए। विश्वनाथ कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा उसे देखता रह गया। सांस जैसे हल्की अटक गई, दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसे महसूस हुआ उसके अंदर खड़ी सारी दीवारें धीरे धीरे टूट रही हैं। श्यामली ने उसकी आंखों में वो बदलाव देख लिया, उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, चूड़ियों की मीठी खनक कमरे में गूंजने लगी। विश्वनाथ वहीं खड़ा रहा, लेकिन उसकी नजरें अब हट नहीं रही थीं। हर कदम के साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इतना करीब कि उसकी खुशबू सांसों में उतरने लगी। श्यामली उसके सामने आकर रुक गई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, अब भी भागेंगे मुझसे। उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं थी, बस अपनापन था। विश्वनाथ का गला सूख गया, उसने नजरें फेरनी चाहीं, लेकिन नहीं फेर पाया। श्यामली ने धीरे से हाथ उठाया, उसकी उंगलियां विश्वनाथ के गाल को हल्के से छू गईं। बस एक हल्का सा स्पर्श, लेकिन उसी स्पर्श ने जैसे उसके अंदर दबे सारे एहसास जगा दिए। विश्वनाथ की आंखें पल भर को बंद हो गईं। उसके भीतर छुपा प्यार, दबी हुई चाहत, पूरे दिन की रोक, सब फिर से जाग उठे। श्यामली अब और करीब आ चुकी थी, उसकी सांसें उसके सीने से टकरा रही थीं। कब तक खुद को सजा देंगे, उसने फुसफुसाकर कहा। विश्वनाथ ने तुरंत आंखें खोली, उसकी नज़र सीधा श्यामली पर टिक गई। उस नज़र में डर भी था और बेपनाह मोहब्बत भी। उसने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया, इतनी मजबूती से कि श्यामली हल्का सा उसकी तरफ खिंचाई। अगले ही पल विश्वनाथ ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। श्यामली का चेहरा सीधे उसके सीने से लग गया। दोनों की सांसें तेज थीं, दिल इतनी तेजी से धड़क रही थीं जैसे बरसों की दूरी एक पल में मिट रही हो। विश्वनाथ झुक पर उसके कान के पास रुका, उसकी भारी आवाज़ कांप रही थी। बहुत बड़ी गलती कर रही हो तुम, लेकिन श्यामली मुस्कुरा दी, क्योंकि वो समझ चुकी थी ये चेतावनी नहीं थी, ये उस आदमी की आखिरी हार थी जो बहुत समय से खुद से लड़ रहा था। उधर हवेली के दूसरे कमरे में अदिति बेड पर पालथी मारकर बैठी थी, जबकि आर्यन सोफे पर आधा लेटा हुआ उसे देख रहा था। अदिति के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। वैसे, उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, अगर मेरा आइडिया काम कर गया ना
तो मुझे क्रेडिट जरूर मिलेगा। आर्यन हंस पड़ा। तुम खुद को क्या समझती हो, लव गुरु? अदिति ने तुरंत तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंका। हाँ, और वैसे भी पापा ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सच कहूं? आज पहली बार लगा शायद वो खुद से लड़ना छोड़ देंगे। अदिति की मुस्कान हल्की नरम पड़ गई। उन्होंने बहुत वक्त अकेला काटा है ना। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि उन्हें हमेशा डर रहा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन श्यामली के साथ वो अलग होते हैं। अदिति ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? आर्यन हल्का मुस्कुराया, शांत। जब वो उनके साथ होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर का सारा बोझ हल्का हो जाता है। अदिति कुछ सेकंड उसे देखती रही, फिर अचानक हंस पड़ी। मतलब आज हवेली में प्यार जीत गया? आर्यन भी हंस पड़ा। लगता तो यही है, अदिति ने आंख मारते हुए कहा। मैंने कहा था ना, गुलाबी साड़ी कमाल करेगी। आर्यन ने नकली गंभीरता से सिर हिलाया। उस साड़ी के सामने तो विश्वनाथ सिंह राठौर भी हार गए होंगे। दोनों जोर से हंस पड़े और उसी हंसी के बीच हवेली की भारी रात पहली बार थोड़ी हल्की लगने लगी। कमरे की हल्की रोशनी में दोनों अब भी एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। विश्वनाथ की बाहों की पकड़ ढीली नहीं हुई थी और श्यामली, वो जैसे पहली बार उसे इतने करीब से महसूस कर रही थी। उसके सीने की तेज धड़कने, उसकी भारी सांसें, सब बता रही थी कि उसके अंदर कितनी उथल पुथल चल रही है। श्यामली ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें सीधा विश्वनाथ की आंखों में उतर गईं। अब भी डर लग रहा है, उसने बहुत नरमी से पूछा। विश्वनाथ कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर हल्की हंसी उसके होंठों पर आई, थकी हुई टूटी हुई हंसी। तुमसे नहीं, उसने धीमे कहा, खुद से लगता है। श्यामली की आंखें और नरम हो गईं। वो थोड़ा और करीब आई, इतना कि उसके झुमके हल्के से विश्वनाथ की गर्दन को छू गए। विश्वनाथ की सांस फिर भारी हो गई। उसने जैसे खुद को संभालने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन श्यामली पीछे नहीं हटी। उसने धीरे से अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। उंगलियां उसकी दाढ़ी के पास हल्के से ठहर गईं। हर बार खुद को रोक लेंगे, उसने फुसफुसाकर कहा, तो मुझे कैसे यकीन होगा कि मैं आपकी हूं? उस एक सवाल ने जैसे विश्वनाथ के अंदर की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। उसने तुरंत श्यामली को और करीब खींच लिया। उसका माथा श्यामली के माथे से टिक गया। दोनों कुछ पल वैसे ही खड़े रहे। बाहर हवेली में गहरी रात उतर चुकी थी, लेकिन उस कमरे में दो धड़कनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म हो रही थी।